بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمہ اللہ تعالی بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور گریجویٹ تھے لوئر تھے اور لوئر کے پروفیشن میں انہیں اطمینان حاصل نہیں ہوا چونکہ طالب علمی کے زمانے سے اسٹوڈنٹ ڈیز سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اصلاحی تعلق تھا حضرت کی صحبت میں جاتے تھے حضرت کی کتابیں پڑھتے تھے حضرت کے مواعظ کو دیکھتے تھے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کی برکت سے دین میں بہت پختگی آ گئی تھی دین میں بہت اسٹرانگ تھے دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اللہ ہمیں بھی کسی اللہ والے کی توجہ نصیب فرما دے کسی اللہ والے کی توجہ کا نصیب ہو جانا یہ بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی نعمت ہے آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالی جب کسی کو کوئی نعمت کوئی دولت عطا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مینز اور اس کے ریسورسز اللہ خود پیدا فرماتے ہیں کسی کو مالدار بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے راستے اللہ تعالی بناتے ہیں کسی کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے اسباب پیدا فرماتے ہیں ریسورسز مینز خود تیار کرتے ہیں اللہ تعالی تو کسی کو اللہ تعالی جب اپنا دوست بنانے کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ میں اسے اپنا ولی بنانا چاہتا ہوں اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے بھی اللہ ہی اسباب اور مینز اور ریسورسز پیدا کرتے ہیں سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا جو ذریعہ ہے جو وسیلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی ولی کے دل میں ہماری محبت پیدا فرما دیتے ہیں تو کوئی اللہ والا ہو کوئی نیک آدمی ہو کوئی بزرگ ہو कोई वली हो, कोई साहिब दिल हो, उसके दिल में हमारी मोहब्बत पैदा हो जाए तो ये समझ लो कि अल्लाह ताला मुझे भी वली बनाना चाहते हैं। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला किसी साहिब दिल के दिल में हमारी भी मोहब्बत पैदा फरमा दे। और अल्लाह ताला किसी वली से हमारा भी ताल्लुक पैदा फरमा दे और उसके बरअक्स अगर अल्लाह ताला किसी को अपनी बारगाह से दूर करना चाहता है तो उसको अपने नेक बंदों से दूर कर देता है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। दूर कर देता है अल्लाह ताला। ये अलामतें हैं। एक शख्स की आंखें पीली हो जाए, येलो हो जाए तो उसे फिक्र करनी चाहिए कि मुझे जॉन्डिस हो रहा है। तो इसी तरह बुजुर्गों की तवज्जो हमसे यूं हट जाए ये बहुत खतरे की बात है। अल्लाह कुछ देना चाहता है रूहानी एतबार से तो किसी वली के दिल में हमारे लिए जगह पैदा फरमा देते और कुछ देना नहीं चाहते तो कुर्ब हासिल होने के बाद भी अल्लाह धक्के दे देता है। मेरे हाजी साहिब रहीमहुल्लाह ताला मेरी मुलाकात तो हजरत से मदीना मुनव्वरा में कई मरतबा हुई। मुलाकात तो नहीं, जियारत। और मैंने हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई रहीमहुल्लाह ताला की मजलिस में भी हजरत हाजी साहब को देखा। बहुत अदब से बैठे हुए और हजरत मौलाना उन्हें बहुत करीब बिठाते थे और हजरत हरदोई रहीमहुल्लाह ताला जब भी कोई बात इरशाद फरमाते थे तो हाजी साहब रहीमहुल्लाह ताला बहुत दाद देते थे। मुझे तो ये पता नहीं था कि ये हाजी फारूक हैं। और हजरत हरदोई रहीमहुल्लाह ताला की मजलिस में जो एक अजमत का बोझ सब पर रहता था वो सबको मालूम है। उस मजलिस में हकीम अख्तर साहिब, कारी अमीरुल हसन साहिब दामद बरकातहुम अभी मौजूद, बड़े बड़े और भी उलमा, तो हाजी साहब उनकी बातें सुनकर फरमाते थे कि हजरत क्या बात आपने इरशाद फरमाई, वाह वाह हजरत क्या बात इरशाद फरमाई, दिल के ताले खुल गए हजरत फिर इरशाद फरमाए। ये अंदाज था हजरत हाजी साहब का, वाह 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 वाह, इस तरह हजरत बहुत पूरे इसकी तरफ और दो जानों बैठ करके पूरी मजलिस में बैठते थे। तो इससे मुझे अंदाजा ऐसा हुआ कि थानवी मसलक के ये कोई अहम शख्स हैं। हमारे मौलाना मंजूर अल हुसैनी साहिब थे, अल्लाह उनको गरी के रहमत फरमाए, वो हाजी साहब से बैठ थे और 1986 में मैं सबसे पहली मर्तबा साउथ अफ्रीका गया, वहां कादियानी केस चल रहा था कि कादियानी मुसलमान है या काफिर केप टाउन में। तो उस वक्त मैंने मौलाना मंजूर अल हुसैनी से हजरत हाजी फारूक साहिब रहिमहुल्लाह ताला का तज़किरा सुना था 1986 में। ये पहली मर्तबा मेरे कान में हजी साहब की बात पड़ी थी कि एक बुजुर्ग हैं हजी फारूक साहिब और हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब के खलीफा हैं और सक्खर में हैं, और मौलाना ने फरमाया कि मैं उनसे बैठूं। उसके बाद उनका तज़किरा मेरे कानों में पड़ा मेरे बहुत ही मुखलिस दोस्त हजरत मौलाना इलियास साहिब बंगलोरी, अल्लाह उनको गरीब रहमत फरमाए। वो हजी साहब रहिमहुल्लाह ताला को यहां बुलाने की कोशिश कर रहे थे, और हजी साहब रहिमहुल्लाह ताला के पासपोर्ट पे वीजा भी लग गई, लेकिन डॉक्टर साविर साहिब मरहूम के वीजा न लगने की वजह से हाजी साहब ने मना फरमा दिया कि मैं साबिर के बगैर तो सफर नहीं करूंगा। दोनों ये सब जिनका तज़किरा हो रहा है अल्लाह को प्यारे हो गए, और सबसे हमारे मोहब्बत के ताल्लुकात थे, इस वजह से इनके तज़किरे में लुत्फ भी आता है और तबीयत पे असर भी होती है होता है। तो मौलाना इलियास साहब रहिमहुल्लाह ताला से मैं तज़किरा सुनता रहता था, देखा नहीं था हाजी साहब को कभी, यानी देखा तो था लेकिन ये पता नहीं था कि ये हाजी साहब हजरत हरदोई की मजलिस में रोजाना मैं असर की नमाज के बाद इनको देखता था। हज में मैं भी गया था, ये हजरत भी आए। मौलाना इलियास साहब बार बार तज़किरा फरमाते थे, तो एक दिन मैं फजर की नमाज के बाद सलातो सलाम पढ़कर उधर से छतरियों के नीचे से गुजर रहा था कि मेरी हजी साहब पर नजर पड़ी। देखता था मैं हरम शरीफ में, डॉक्टर साबिर साहब हमेशा व्हीलचेयर में लेकर के जाते थे, मेरी नजर पड़ी कि किबले की तरफ रुख करके बैठे हुए। हजी साहब का ये मामूल था कि फजर की फर्ज से फारिग होने से इशराक के वक्त तक किबले की तरफ सीना रख करके बैठते थे, ये मामूल रहा पूरी जिंदगी। और ये फरमाते थे कि हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया है कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़कर किबले की तरफ रुख करके बैठा रहे इशराक की नमाज तक, तो अल्लाह ताला उसके दिल को गंजी नए असरार बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला उसके दिल पर अपनी तरफ से उलूम का इल्का फरमाते हैं। तो हाजी साहब वहां बैठे हुए थे, मैं वहां से निकल रहा था, तो उस वक्त जब मेरी नजर हाजी साहब पर पड़ी तो पता नहीं क्या बात थी कि मेरे दिल में यह ख्याल आया कि यही हाजी फारूक है। देखा तो मैंने उनको बहुत दफा था और सुना भी बहुत दफा था, उस वक्त मेरे जहन में कि ये हाजी फारूक है। तो मैं चलते चलते सीधा हजरत की तरफ गया और हजरत के सामने जाकर के मैं बैठ गया, दो जानों बैठ गया। तो हजरत ने मुस्कुराकर, मैंने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाए हजरत ने, और मैंने कहा कि हजरत एक तालिब इल्म हूं, इंग्लैंड से हाजिर हुआ हूं, असल गुजरात का रहने वाला हूं, दुआओं की दरख्वास्त से हाजिर हुआ। बस ये मेरी पहली मुलाकात और मुसाफत है हजरत से। और उठ करके चले गए हम, बुजुर्ग थे, कोई वाकिफियत नहीं थी, लेकिन अल्लाह वाले थे तो मुलाकात कर लेनी चाहिए। उसके बाद हजरत यहां तशरीफ लाए, हजरत यहां तशरीफ लाए तो मुझे मालूम हुआ कि हजरत लेस्टर भी तशरीफ ला रहे हैं, तो मेरे दिल में ऐसा दाइया पैदा हुआ कि हजरत को हमें अपनी तरफ से दावत देनी चाहिए कि आप हमारे यहां तशरीफ लाए। तो मैंने फोन किया यहां से, मौलाना मंजूर साहब ने फोन उठाया और फोन उठा करके मैंने उनसे कहा कि मैं हजरत से बात कर सकता हूं। उनका बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो मेरे दोस्त थे, बहुत चाहने वाले। मैंने कहा हजरत को कोई नागवारी तो नहीं होगी? कहा नहीं नहीं नहीं, कोई नागवार। मैंने कहा मुझे तो पहचानते भी नहीं है वो, तो कोई बात नहीं। तो मेरी सबसे पहली गुफ्तगू जो हुई वो टेलीफोन पर, मैं 160 में ऊपर मेरे बिस्तर में बैठा हुआ था, बैठकर गुफ्तगू कर रहा था, लेटा हुआ था, लेकिन मैं बुजुर्गों से जब बात करता हूं तो अदब से बैठ जाता हूं। तो मैं बैठ गया और मैंने अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हजरत के मिजाज बखैर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूं। उसके बाद मैंने कहा कि हजरत मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि मैं एयरपोर्ट पे हाजिर हो जाता, लेकिन मुझे बुखार बहुत ज्यादा है। मैं यहां तक पहुंचा कि हजरत ने वहां से बात करना शुरू फरमा दिया। हजरत ने वहां, अच्छा फिर तो आप बुखारी हैं। हजरत ने वहां देखा, फिर तो आप बुखारी हैं। और फिर दुआएं हजरत ने देनी शुरू की, ये वो खत्म हो गई बात। फिर हजरत यहां तशरीफ लाए लेस्टर। कयाम तो किसी और जगह पर था, मैं वो कह ना सका हजरत को कि हजरत मेरे यहां तशरीफ लाए, हिम्मत नहीं हुई। तशरीफ लाए तो मैं भी वहां पहुंच गया, मुलाकात हुई अलैहिस्सलाम, पूरे सीरियसनेस के साथ। हजरत तवाजु बहुत ज्यादा थी, किसी ने तारुफ कराया कि यहां मस्जिद नूर है, लेस्टर की सबसे पहली मस्जिद वहां के इमाम है। मैंने कोई तारुफ नहीं कराया कि हजरत आपसे वहां मुलाकात हुई थी या मैंने टेलीफोन किया था, मेरी ये तबीयत ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हजरत तैयार होकर के बाहर निकले, हम भी निकले, बहुत मुतवाजे थे, तो मुझे भी उसी गाड़ी में बैठना था, हम सब हजरत के बैठने का इंतजार कर रहे थे। तो हजरत मेरी तरह मुतवज्जे और फरमाने लगे कि अगली सीट में तो आप ही बैठ जाए, इसलिए आप यहां की बड़ी मस्जिद के इमाम साहिब। बहुत मुतवाजे हजरत का अंदाज ही अजीब था। मैं लगा नहीं हजरत, हम तो आपके बच्चे ही हैं, तो इमाम तो क्या, हम तो आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं, कुछ इस्तिफादा करें, ये सीट तो आप ही की है। और मैंने यहां बाजू हजरत का पकड़ लिया, मोहब्बत तुझको आदाब मोहब्बत खुद सिखा देगी। और आदाब और मोहब्बत के साथ जो आदमी रहता है वो सामने वाले के दिल में उतर जाता है। मोहब्बत, अकीदत, आदाब, इसके बगैर कामयाबी नहीं होगी। कुछ लोग सिर्फ ताल्लुक को मकसूद बनाते हैं कि भाई इनसे हमारा ताल्लुक हो जाए, बड़े आदमी हैं। साथ गए, सामने बैठे हजरत के दो जानू, हजरत का आवाज सुना और आवाज सुनकर मैं तो भाग आया, क्योंकि मुझे यहां मदरसे में पहुंचना था। उस वक्त तो फुल टाइम मदरसा नहीं था, लेकिन शाम को यहां अल फारूक में बच्चों को संभालना था। और फिर रात को दोबारा गए, वहां कुछ मजलिस चल रही थी, तो अदब से बैठे रहे एक कोने में, कोई ملاقات ملاقات حضرت کا میری طرف دیکھنا کچھ نہیں. پھر دوسرے دن دوپہر کو ایک جگہ پر کھانے میں ہم شریک رہے. کھانے میں شریک رہے تو کھانے سے جب فراغت ہوئی میں ادب سے اسی لائن میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں جس لائن میں بزرگ ہوتے، تاکہ کھانے میں کوئی ایسی بیعت بھی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ان کو سامنے سے تکلیف ہو. تو میں اسی لائن میں بیٹھا ہوا تھا. میرے اور حضرت کے درمیان ڈاکٹر صابر صاحب تھے. تو کھانے سے فراغت پر میں نے پانی پیا تو بائیں ہاتھ سے میں نے گلاس پکڑا اور دائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جس سے عام طور پر، اور میں نے پانی دیا اور رکھ دیا پانی. حضرت نے اسے دیکھا، اٹھ کر کے دوسرے کمرے میں ہم گئے تو اب سب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت نے بات شروع فرمائی کہ میرے ابا جی یہ فرمایا کرتے تھے کہ دائیں ہاتھ سے پانی پینا سنت ہے، اور یہ سنت اس وقت ادا ہوگی جبکہ گلاس پورا کا پورا دائیں ہاتھ پر ڈیپینڈ کرے. اگر کوئی شخص بائیں ہاتھ میں گلاس پکڑتا ہے اور دائیں ہاتھ کو نیچے رکھ دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو چھوڑ کر کے دیکھے کہ گلاس رہتا ہے کہ نہیں. گلاس رہتا نہیں اس کا مطلب یہ کہ گلاس بائیں ہاتھ میں ہے، دائیں ہاتھ میں نہیں ہے، لہذا سنت ادا نہیں ہوئی. یہ حاجی صاحب نے فرمایا اور میری طرف بالکل نہیں دیکھا، دوسروں کی طرف دیکھ کر کے فرمایا. اور پھر پوچھتے رہے ادھر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ سمجھ میں آئی بات، یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں. اور یہ کہنے کے بعد حضرت نے میری طرف یوں کر کے دیکھا بہت غور سے، تو میرے چہرے پر تو کیا تغیر ہونا تھا، میں تو بہت خوش ہوا کہ ایک نئی علمی بات معلوم ہوئی، کتنا اہم نقطہ. تو میرے چہرے پر تو بہت فرحت تھی اور بہت خوشی تھی. تو حضرت یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ظاہری علوم کی اکڑ پھوں ہے کہ نہیں. تو اللہ نے فضل فرمایا، اب تک تو کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ کوئی ہمارا تعلق. پھر حضرت نے فرمایا کہ بھائی اب میرا نظام کیا ہے، آج آگے یہ مجھے بتلا دو. تو نظام میں ذرا گڑبڑی ہونے لگی تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا بتاؤ کہ کہاں کہاں جانا ہے. تو میں چونکہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، مسجد نور کی تعمیر ہو رہی تھی تو وہاں حضرت کو دعا کے لیے لے جانا تھا، میں نے درخواست پیش کر دی تھی میزبان کو اور پھر اکیڈمی پر لے جانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ان کے یہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی، تو حضرت نے وہیں روک دیا ان کو، انہیں رہنے دیجئے، یہ تو میرے اپنے آدمی ہیں، یہ تو میرے اپنے آدمی، ان کے یہاں تو ہم رات کو 12 بجے بھی جا سکتے، جو پرائے ہیں ان کو پہلے نمٹاؤ. تو میں وہاں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہوں کہ ہمارا تو آپ سے کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے، نہ کوئی تعلق نہ کوئی پہچان، اور ہمارے اپنے. بس وہاں سے حضرت کے ساتھ ہمارا تعلق شروع. اور اندر تھوڑا بہت بھی کچھ ہوتا تو پتہ نہیں حضرت کی ان شفقتوں اور ان توجہات کی برکت سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. لیکن پتھر پر سورج کی روشنی جتنی بھی پڑتی رہے وہ کہاں چمکے گا. تو توجہ حاصل ہو جائے کسی بزرگ کی، کسی اللہ والے کی، ये बहुत बड़ी दौलत। तो मैंने फिर एक दिन कहा, मैंने कहा हजरत आपको याद भी है कि हमारी सबसे पहली मुलाकात कहां हुई थी? तो कहां हुई थी? मैंने कहा इशराक से पहले पहले आप वहां नीचे छतरियों के पास बैठे हुए थे डॉक्टर साहब मेरे साहब के साथ, और मैं वहां पहुंचा था। तो हजरत ने फरमाया कि मुलाकात किया वहीं तो तुमने मेरा दिल खींच लिया था। तो हजरत को याद था वो। तो फिर मुझे जहन में आया कि हजरत ने यहां जो फरमाया कि ये तो मेरे अपने हैं, तो उस मुलाकात से हजरत के दिल में ताल्लुक पैदा हो गया। इंशाअल्लाह हर महीने अब इसी तरह का निजाम रहेगा, इसी तरह का निजाम। आते हैं, बयान सुनते हैं, चले जाते हैं, क्या फायदा? आए, मुलाकात भी हो, मजलिस भी हो, कुछ काम भी हो। कोई तिलावत हुई कि नहीं आज? कज़ा नमाज हुई कि नहीं? तो उम्मीद कवि है कि इसका इंशाअल्लाह फायदा होगा। तो आप हजरात इसी तरह एहतिमाम से आते रहें। तो डॉक्टर साहब की मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर अब्दुल आरिफी रहीमहुल्लाह ताला थे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और बन रहे थे क्या लॉयर। देखो यहां उलमा बहुत कम है, नन उलमा ज्यादा है और प्रोफेशनल्स भी हैं। ये मैं ज्यादा एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं कि आप हजरात अपने जहन से ये बात निकाल दें कि हम वली नहीं हो सकते। जो मेहनत करेगा वो वली होगा। सब हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उलमा पीछे रह जाएं और ग्रेजुएट आगे निकल जाएं। अल्लाह ने अपनी दोस्ती का दरवाजा सबके लिए खोला है, वहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो जो यहां ग्रेजुएट्स बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, ऑप्टिशियंस हैं, अकाउंटेंट्स हैं, जो भी अपनी अपनी फील्ड के कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, आप अपने जहन से ये बात निकाल देंगे ये काम तो हमारे लिए नहीं है और हम तो यहां इसलिए आते हैं कि बस अब थोड़ा बहुत सवाब मिल जाए और आखिरत में किसी तरह नजात मिल जाए। इस नीयत से आओ कि हमें आला दर्जे की विलायत हासिल करनी है और हमारे अंदर तो वो मेहनत है नहीं, लेकिन अल्लाह कर देगा, अल्लाह करेगा। मैं हमेशा ये बात कहा करता था और मुझे अभी पिछले दिनों मेरे हजरत शेख मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहिमहुल्लाह ताला के कलाम में वो बात लिखी हुई मिल गई तो बहुत मेरा जी खुश हुआ। पहले कहता तो था लेकिन कहीं देखा नहीं था। मैं ये कहा करता था कि अल्लाह से दोस्ती और अल्लाह की विलायत ये किसी इंसान के बस में नहीं है। ये रास्ता इतना तवील और मुश्किल है। भाई आप और हम इस वक्त बैठकर के ये सोचें कि प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारी दोस्ती हो सकती है, नामुमकिन लगता है कि ये कैसे हो सकता है। तो अल्लाह ताला के साथ दोस्ती, ये तो बहुत लंबा रास्ता है कि दिल इस काबिल हो जाए कि अल्लाह की मोहब्बत उतर जाए और अल्लाह से दोस्ती हो जाए, बहुत मुश्किल। लेकिन मेरे शेख ये बात मैंने भी बारहा कही है मजलिसों के अंदर कि अल्लाह तक कोई नहीं पहुंच सकता, अल्लाह खुद हमें खींच लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है उसे बाप उठाता है और कहते हैं कि बेटा चलो, अब वो डगमगाता है, खड़ा हुआ है लेकिन कदम नहीं ले सकता। बाप दूर खड़े होकर कहते कि बेटा आओ, चलो चलो बेटा। वो एकाद कदम उठाता है, एकाद कदम दो कदम उठाता है, बाप गिरने नहीं देता। उसके गिरने से पहले बाप खुद उसे उठाकर खींच लेता है अपनी तरफ। अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। थोड़ी बहुत कोशिश करो अल्लाह खुद खींच लेगा। कोशिश जरूरी है, اپنا تعلق کسی اللہ والے سے جوڑو, جوڑ کر کے مضبوطی کے ساتھ اس کو اپنی ساری حالت بتلاؤ, اور ساری حالت بتلا کر کے جتنا عمل کر سکے کرو, جہاں کہیں ادھر ادھر گرو گے اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا انشاءاللہ. تو ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمتہ اللہ علیہ کی حضرت تھانوی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے دین میں اتنی پختگی پیدا ہو گئی تھی, اتنی پختگی پیدا ہو گئی تھی کہ لوئر کا کام شرعی حد میں رہ کر کے کرتے تھے پھر بھی تسلی نہیں ہوتی تھی, اس سے کہ اس میں کہیں نہ کہیں آدمی سلپ ہو جاتا ہے, کیس لڑنا پڑتا ہے, جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو اتنی محنت اور اتنا خرچہ کیا اس زمانے میں لوئر کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے, لیکن ایک گریجویٹ جب حضرت تھانوی کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کا ذہن ایسا ہو جاتا ہے دین کے معاملے میں کہ اس سے اطمینان نہیں ہوا تو خود ہومیوپیتھی کا پھر کورس کیا, اور ہومیوپیتھی کا کورس کر کے انہوں نے سرجری کھولی, اور سرجری کھولنے کے بعد انہوں نے ہومیوپیتھک کا کام شروع کیا اپنی ذریعے معاش کے لیے. تو جس وقت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ نے اپنا لوئر کا کام بند کر دیا ہے اور ڈاکٹری کا کام شروع کیا ہے, تو حکیم الامت نے ان کو خلافت دی اور خط میں یہ لکھا کہ لوگوں کی جسمانی بیماریوں کے علاج کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں کا علاج بھی آپ فرمائیں, میں تمہیں خلافت دیتا ہوں. اور جو حاضرین تھے, یہ علماء کے لیے ہے خاص, حاضرین تھے, ان سے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب صاحب نسبت بہت پہلے سے ہو چکے تھے, لیکن خلافت ایسے آدمی کو دی جاتی ہے جو لوگوں کی نظر میں بھی باعزت ہو, ہر کسی کو نہیں دی جاتی, اور ہمارے عرف میں لوئر کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا, لوئر کو اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرتے ہیں, اس لیے میں نے ڈاکٹر صاحب کو خلافت نہیں دی تھی. جب انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا اب کوئی حرج نہیں تو میں نے خلافت دی. تو یہ ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ پھر ایسے چمکے, ایسے بلند ہوئے, ان کے زمانے میں لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے ملفوظ اور جتنے علوم ان کے پاس ہے اتنے کسی کے پاس نہیں ہے, ایک زمانہ ایسا آیا تھا. حالانکہ یہی ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کی خدمت میں جاتے تھے اور مجلس سے اٹھتے تھے تو ایک بات یاد نہیں رہتی تھی, لیکن ہماری طرح تو وہ تھے نہیں کہ گئے ذرا ایڈونچر ہو گیا کہ بولٹن سے لیسٹر تک کا سفر ہو گیا کار میں چار پانچ دوستوں کے ساتھ, وہاں بھی ذرا سب سے ملے اور پھر واپس ہو گئے, کیا پایا کیا کھویا حساب وساب کچھ نہیں, کہ وہاں گئے تو کچھ ملا کہ نہیں, ہم نے ٹائم صحیح خرچ کیا کہ نہیں, ہم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا, کھو کر کے تو نہیں آئے. تو انہوں نے ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر خط لکھا کہ حضرت آپ کی باتیں بہت سنتا ہوں لیکن یاد ایک بھی نہیں رہتی, یاد ایک بھی نہیں رہتی. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ میری باتوں کو مجلس میں بیٹھ کے غور سے سنتے رہیں, اس وقت یاد رہیں نہ رہیں فکر نہ کریں, میرے مرنے کے بعد جس مجلس میں میری جس بات کی ضرورت پڑے گی اللہ آپ کے ذہن میں اس کو اجاگر کر دیں گے. کتنے ملفوظات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ڈاکٹر صاحب کے مواعظ اور ڈاکٹر صاحب کی تصنیفات سے امت تک پہنچے, اور مفتی تقی صاحب اور میرے شیخ حضرت مولانا لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی تقی صاحب, مفتی رفیع صاحب دامت برکاتہما, جیسے بڑی بڑی علمی شخصیتیں حضرت کے پاس جا کر بیٹھتی تھی, ان کو عجیب عجیب انمول نقطے ملتے تھے, وہاں علوم عجیب ملتے تھے. اللہ سے تعلق بولو. میں ابھی ہمارے ملی ساجد صاحب سے کہہ رہا تھا, بینلی والے ملی ساجد صاحب, میں کہہ رہا تھا کہ اصل چیز وہ اندر کی چیز ہے, اندر کی چیز باطن اصل ہے, اسے ٹھیک کرو. خوبصورت سے خوبصورت شخص ہو اس کو بہتر سے بہتر کپڑے پہنا دو، لیکن اگر روح نہیں ہے، اس میں لائف نہیں ہے، بیکار پڑا رہے گا. اور بالکل کالا آدمی، موٹے موٹے ہونٹ، چپٹی ناک، بالکل اگلی، اور کپڑے بھی اس نے پھٹے پرانے پہنے ہوئے ہیں، لیکن اندر لائف ہے، سول ہے، تو وہ چل پھر رہا ہوگا، اس میں لائف ہے. اندر کو ٹھیک کرو، اندر کو، روحانیت. کل ہی میں کہہ رہا تھا کہ ایک شیر ہو بہت بڑا، شیر کا پتلا، ایسے ہی کسی نے سکلپچر بنایا ہو شیر کا، یا اس کا کوئی مونیومنٹ بنایا ہو، لائن بہت بڑا، لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے، تو اس کے ساتھ بچہ بھی جا کر کھیلے گا. اور ریئل لائن کا چھوٹا سا کب بچہ اس کا اگر اس کمرے میں ابھی داخل ہو جائے، سب یہاں سے بھاگیں گے. کیوں؟ پہلے کے اندر لائف نہیں ہے، اٹس ناٹ ورتھ فیئرنگ. دوسرے کے اندر لائف ہے. تو اندر جب تک چیز نہیں ہوگی، وہاں تک باہر سے کچھ نہیں. تو میں اصل میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سنا کر اپنی بات کو شروع کرنے والا تھا، لیکن اب معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بات پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. وہ بگیننگ تھی ڈاکٹر صاحب کی بات، لیکن اب اس پر اینڈ کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ نے، غالباً میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی ہی نے یہ نقل کیا ہے، کہ ایک مرتبہ اعتکاف میں سب سے پہلا واعظ جو آپ نے فرمایا، اس میں یہ فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس وقت کہ میں اولیاء کی جماعت میں بیٹھا ہوا ہوں، میں اللہ کے ولیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مجھے اس وقت بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اس وقت اللہ کے ولیوں میں بیٹھا ہوا ہوں. تو میں بھی بیمار اسی لیے آیا کہ وہاں اللہ کے سب ولی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤں. ہم القوم لا یشقى بهم جلیسهم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ نے استدلال عجیب فرمایا، سب کو ولی کہا، آنے والوں کو. استدلال یہ فرمایا کہ تم سب کو اللہ تعالی نے اعتکاف کے لیے اپنے گھر میں بلایا ہے، اور کوئی بھی شخص اپنے دشمن کو کبھی اپنے گھر میں نہیں بلاتا. کوئی شخص بھی اپنے دشمن کو نہیں بلاتا. تو تم سب کو اللہ نے اپنے گھر میں 10 دن مہمان بنایا ہے، اس سے میں سمجھ گیا کہ تم سب اللہ کے دوست ہیں. اب جب تم سب اللہ کے دوست ہو، تم ولی ہو گئے، اولیاء ہو گئے، تو مجھے دل میں اس وقت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا. تو میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب حضرات دور دور سے صرف اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اس طرف میں کہ ہم ایسی زندگی اپنی بنا لیں جیسے اللہ دیکھنا چاہتا ہے. دور دور سے آئے یہ سب. تو ظاہر ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تبھی تو یہاں تک بلایا سب کو، تبھی اس طرح جمع فرمایا. تو اس وقت مجھے بھی بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ سب حضرات میں بیٹھ کر، کہ اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کہ آپ سب دوست ہیں، اللہ کو چاہنے والے ہیں، اللہ آپ کو چاہ رہا ہے. تو ہم سب یہ تہیہ کر لیں کہ ہم پوری زندگی اسی محبت کو باقی رکھنے اور اس محبت کو بڑھانے میں خرچ کریں گے. اس کے لیے بہت مختصر نصاب، بہت ایزی، بہت سمپل، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. یہ طے کر لو کہ گناہ نہیں کرنا ہے، یہ طے کر لو کہ گناہ نہیں کرنا ہے، یہ طے کر لو کہ گناہ نہیں کرنا ہے. اور نفس جو ہے एक मुस्तकिल अलग चीज है, हमसे एक अलग चीज है नफ्स। देखो जाहिरी दीनदारी का आ जाना ये काफी नहीं है, दाढ़ी आ गई, नमाज की रूटीन हो गई, ये काफी नहीं है। सर से लेकर पैर तक मुसलमान हो जाओ, दिमाग भी मुसलमान हो जाए, थिंकिंग मुसलमान हो जाए और दीन की सही समझ आने लगे, एवरीथिंग फॉल्स इन इट्स प्लेस, ये जिक्सो पजल पूरा फिट हो जाए कि दीन के मामले में कभी कोई क्वेश्चन मांगना आए। बहुत से लोग दीनदार हो जाते हैं, दीनदार होने के बावजूद भी उलमा को हिकारत की नजर से देखते हैं, ये दीनदारी कैसी। दीनदार हो जाते हैं लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ते उनको हिकारत से देखते हैं। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखो कि पूरा दिन हमारी जिंदगी में आ जाए, पूरा दिन। और उसके लिए जो है सबसे पहला काम जो करना है वो ये कि अल्लाह की नाफरमानी हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये नहीं कि पिक एंड चूज कर लिया कि ये ठीक है ये चलता रहे कोई बात नहीं, वॉरी करो उसके बारे में, कंसर्न हो कि भाई ये एक प्रॉब्लम है। और बहुत सी मरतबा मिसाल के तौर पर ऐसे लोग कितने होते हैं हमारे मुआशरे में कि पांच वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, उनके चेहरों पे दाढ़ियां भी हैं, उनकी औरतें हिजाब में हैं, निकाब में हैं, सब कुछ है, लेकिन घर में टेलीविजन है और कोई कंसर्न नहीं, कोई फिक्र नहीं। इट्स बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ये दीनदारी कैसी। एक आदमी के जिस्म के ऊपर अगर इतना एक मिलीमीटर भी पाखाना लग जाए तो वो परेशान हो जाएगा कि कब मैं इसको साफ कर लूं। तो ये हमने जो है एक लाइन ड्रॉ कर ली है कि ये चीजें मेरे लिए दिन में इंपॉर्टेंट है, आई हैव टू प्रैक्टिस, ये चीजें कोई बात नहीं, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। नहीं, इसका मतलब है कि अभी दीनदार नहीं है और ऐसा आदमी पकड़ा जाएगा आखिरत। 100% दीनदारी आ जाए, नफरत हो टेलीविजन को देखकर कि ये गंदी चीज यहां किया कर रही। मैं तो किसी के घर में जाता हूं और वहां टीवी देखता हूं तो अंदर अंदर बहुत कुड़न महसूस होती है उस गंदी चीज को देखकर, और उस घर में रहने वाले सबके लिए अंदर दिल से दुआ करता रहता। इसलिए कि टीवी को देखकर मेरे जहन में यह तसव्वुर आता है कि इस घर के लोग रोजाना 2 घंटे जहन्नम में जल रहे हैं, अल्लाह तू इनको बचा ले, अल्लाह तू इनको बचा ले, अंदर से कुड़न महसूस होती है। तो ये इतना तो होना चाहिए कि नफरत हो, उनसे नफरत ना हो जो ये काम कर रहे हैं, इसलिए कि वो बीमार है, बीमारी से नफरत होगी, बीमार से नफरत नहीं। एक आदमी को अगर जिस्म पर फोड़े हो जाए, खून बह रहा हो तो वो तो हमें डर्टी लगता है, उसका ब्लड है और पस है, लेकिन उस आदमी के बारे में फीलिंग होगी कि आई फील सॉरी फॉर हिम, भाई है कि नहीं। और होगा क्या, जब उसके पास जाएंगे तो गंदा है फिर भी उस बिचारे को साफ करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए तो फीलिंग है। बीमारी से नफरत करो, बीमार से नफरत मत करो। मेरे हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह अजीब बात इरशाद फरमाते थे, मुझे एक मरतबा फरमाया कि बेटा मरीज शफकत का मोहताज होता है। कोई भी मरीज हो उसके साथ आप उसका हाथ पकड़ो, उसके सर पे हाथ फेरो, उसके साथ 2-4 अच्छी बातें कहो तो उसको अच्छा लगता है, वो मोहब्बत को चाहता है, शफकत को चाहता है। उसे कोई इग्नोर करता है तो और ज्यादा बीमार हो जाता है। तो हजरत ये फरमाते थे कि बेटा मरीज शफकत का भी मोहताज होता है, और फिर फरमाया कि हर मरीज शफकत का मोहताज होता है, और फिर आगे ये फरमाया कि रूहानी मरीज जिस्मानी मरीज से ज्यादा शफकत का मोहताज होता है। रूहानी बीमार है वो तो कैंसर से भी बड़ी बीमारी में है, उसे गले लगाओ, उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है उसकी वजह से नफरत मत करो, दिल में उस बीमारी से नफरत हो गई, ओहो तौबा 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 तौबा, ये दाढ़ी मुंडवा रहा है, दाढ़ी शेव करता है, दाढ़ी काटता है, लेकिन उसके साथ मोहब्बत करो कि ये शफकत का मोहताज है, ये किसी तरह भी इस बीमारी से निकल आए।
तो तमाम गुनाहों की नफरत हो, तमाम गुनाहों से बचना है, लेकिन गुनहगार से नफरत मत करो। गुनहगार से, अगर गुनहगार से नफरत की हमने, गुनहगार से अगर हमने नफरत की तो समझो कि हम उससे बुरे हो गए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन में मेरे वालिद के साथ तहज्जुद के वक्त उठा, तहज्जुद के वक्त, और तहज्जुद की नमाज पढ़ी मैंने मेरे वालिद के साथ। वालिद शेख सादी के बहुत नेक थे, बहुत ऊंचे दर्जे के, अजीब अजीब तालीमात। तो फरमाया कि मैं एक दिन तहज्जुद के वक्त उठा मेरे वालिद साहब के साथ, और तहज्जुद पढ़ी तो अंदर अंदर से नफ्स बहुत खुश हुआ कि हमने तो तहज्जुद पढ़ी, और कुछ लोग वहां सोए हुए थे। तो मैंने मेरे वालिद साहब से कहा कि अब्बा जान, ये लोग कैसे गाफिल हैं कि तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकते। अब उस जमाने में तो तहज्जुद के लिए न उठना वो हमारे जमाने में फजर के लिए न उठने से भी ज्यादा बुरा था, सब तहज्जुद गुजार होते थे। तो कहा कि अब्बा जान, ये लोग कैसे हैं कि तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ते। तो शेख सादी फरमाते कि मेरे वालिद ने कहा कि बेटा, अगर तू भी तहज्जुद न पढ़ता और इनकी तरह सोया रहता, ये इस बात से बेहतर था कि तूने तहज्जुद पढ़ी और अपनी जुबान से ऐसी बात निकाली, किसी को तूने हकीर समझा, इन लोगों को तूने ऐसा समझा कि ये हकीर लोग हैं कि तहज्जुद नहीं पढ़ते, तो इससे अच्छा ये होता कि तू। तो आजकल मेरे भाइयों, शैतान इस धोखे में बहुत लोगों को डाल देता है कि हम दीनदार हो गए, हम दीनदार हो गए, और फिर मुआशरे में जरा लोग इज्जत की नजर से देखते हैं तो बहुत ही कि हम तो ये दीनदारी हमें नहीं चाहिए, हमें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली दीनदारी चाहिए। और ये तवाजू, हम्बलनेस, उजब से हिफाजत, किब्र से हिफाजत, रिया से हिफाजत, ये मशाइख से ताल्लुक रखे बगैर नहीं आएगी, मशाइख से इस्लाह कराए बगैर नहीं आएगी, ये बात याद रखो। इसलिए सबसे पहली चीज, अपने आप को तमाम गुनाहों से बचाओ। पूरी शरीयत के पाबंद बनाने के लिए नंबर दो, अपने मशाइख से राबता रखो, मशाइख से राबता, और वो जो कुछ कहते हैं उसको कैरी आउट करो। और हर शख्स ये कर सकता है, डॉक्टर है तो भी कर सकता है, इंजीनियर है तो भी कर सकता है, आम वर्किंग आदमी है तो भी कर सकता है, स्टूडेंट भी कर सकता है। हमारी डे टू डे लाइफ में हमें जो बुराइयां नजर आती हैं वो हम देखें और उसके मुताबिक अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो तमाम गुनाहों से बचो, गुनाह हो जाए बार बार तौबा इस्तिगफार करो, अपनी जिंदगी में गुनाहों को आइडेंटिफाई करो, अल्लाह ताला से खूब दुआ करो कि अल्लाह इसको मेरी जिंदगी से निकाल दे, नफरत पैदा करो उसकी। गुनाहों से बचो, जो चीजें बुरी हैं उनको आइडेंटिफाई करके निकालो, और नंबर तीन उसके लिए दुआ करो, गुनाहों को आइडेंटिफाई करके दुआ करके निकालने की कोशिश करो, और नंबर तीन इस्तिगफार और तौबा खूब करते रहो, और नंबर चार अपने शेख से ताल्लुक, अपनी चीज बतलाओ कि मेरे दिल में ऐसा फीलिंग होता है, मैं आई लुक डाउन अपॉन पीपल, मुझे लोगों से नफरत है, मुझे हेट्रिड है, हसद है, कीना है, इन चीजों को निकाले बगैर जन्नत में कैसे जाएंगे। ईमान खतरे में है मेरे भाइयों, और मशाइख के बगैर ये चीज साफ नहीं होगी। ये वुजू जैसा नहीं है कि किताब में पढ़ करके आप वुजू कर लो, इसके लिए तो बहुत एक्सपर्टीज चाहिए इन चीजों को निकालने के लिए। तो मशाइख से राबता, अपना जो भी शेख है मशाइख से राबता, आना जाना, लिखना, कॉन्टैक्ट, और उसके अलावा मामूलात की पाबंदी, बस भाई समझ में आ गई। नंबर एक, गुनाहों से मुकम्मल बचो, गुनाहों से। नंबर दो, अपने शेख से बराबर राबता, और नंबर तीन मामूलात की खूब पाबंदी, जिक्र, अज़कार, तस्बीहात। और जो गुनाहों से बचना है उसमें, नंबर एक गुनाहों से बचो, नंबर दो हो जाए तो फौरन तौबा और इस्तिगफार, और नंबर तीन वो गुनाह जो छूट नहीं रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके दुआ करोगे, अल्लाह ए अल्लाह। अब खुद भी टेलीविजन की बहुत आदत है, पूरी फैमिली को आदत है, या खुद को आदत नहीं है पूरी फैमिली को आदत है, निकालना मुश्किल है, तो उसे मकसद बनाओगे, ए अल्लाह ए अल्लाह ऐसे असबाब पैदा फरमा दी कि ये निकल जाए, ए अल्लाह ऐसे असबाब पैदा फरमा दी कि निकल जाए, दुआ तो करो। कैंसर किसी को हो जाता है तो सबको पता है कि यह लाइलाज है, अब ये मर जाएगा, लेकिन फिर भी सब दुआ करते हैं कि नहीं। हमारे मौलवी शोएब पालेज वाला के भाई उस्मान गनी बहुत शदीद बीमार हो गए अभी, तो डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये रुखसत हो रहा है, आखिरत की तरफ जा रहा है और अब बचने के कोई इम्कान नहीं है। लेकिन फिर भी वहां हम गए तो वहां दुआ हुई एक दो मरतबा, तो दुआ में सब आमीन इतनी कुव्वत के साथ कह रहे थे कि उनको यकीन था कि वी कैन स्टिल रिवर्स दिस डिसीजन ऑफ अल्लाह, ऐसी दुआ हो रही थी। और वाकई उसका फायदा हुआ कि वो ठीक हो रहा है माशाल्लाह, उसने आंखें खोली, अब बोलने लगा है, अल्लाह उसको बहुत ज्यादा तंदुरुस्ती अता फरमाए, हिफाजत फरमाए। तो भाई ये काम हमें करने हैं, अल्लाह ताला आप सब के आने को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की मुकम्मल इस्लाह फरमा दे, हमारे दिल को बिल्कुल दुरुस्त फरमा दे, उसमें जो बुराइयां हैं जो रजाइल हैं उनको पाक और साफ फरमा दे। واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله